आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। शांघाई तावुन तंजीम एससीओ सरबराह कॉन्फ्रेंस चीन के शहर तियानजिन में आज शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफा के शोबे में खुद किफालत हासिल करने की कोशिश मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए नहायत अहम है। हौजी ग्रुप ने तस्दीक की है कि उसके वजीर आजम अहमद अर्राहवी यमन में इसराइल के फजाई हमले में हलाक हो गए और भारत ने कजाखिस्तान के शिमकेंट में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो चैंपियनशिप की तारीख में पहली मर्तबा सोने के 50 तमगे जीतकर सर फहरिस्त रहा। अब खबरें तफसील से। शांघाई तावुन तंजीम एससीओ के सरबराहाने मुमलिकत कौंसिल का 25वां इजलास आज चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए तियानजिन पहुंच गए हैं। इस दो रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस में 20 से ज्यादा मुल्कों के आला रहनुमा और 10 बैन अलाक्वामी तंजीमों के सरबराह शिरकत कर रहे हैं। चीन की सदारत में साल 2025 को पायदार तरक्की का एससीओ साल करार दिया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
शंघाई के जज्बे को बरकरार रखते हुए शंघाई ताउन तंजीम एससीओ की पेशरफ्त के मौजू पर शंघाई ताउन तंजीम का दो रोजा इजलास आज तियानजिन में शुरू हो रहा है। वजीर आजम मोदी कल तियानजिन पहुंचे, जहां हवाई अड्डे से होटल तक उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बड़ी तादाद में लोग वजीर आजम को देखने और मिलने के लिए जमा हुए। इस मौके पर भारतीय मौसीकी के मारूफ असातिज़ा से तरबियत याफ्ता चीनी नजाद फनकारों ने भारतीय साजों के साथ रूह परवर क्लासिकी मौसीकी पेश की, जिसने इस्तकबालिया तकरीब को यादगार बना दिया। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में एससीओ की गुज़श्ता 25 साल की कामयाबियों का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा आइंदा 10 साल के लिए तरक्याती हिकमत अमली वज़ा की जाएगी और अहम मामलात पर गौर खौज किया जाएगा, जिनमें इलाकाई सलामती, बाहमी रवाबित, पायदार तरक्की, इंसदाद दहशतगर्दी और सकाफती ताउन शामिल हैं। वजीर आजम ने मोदी की सरगर्म शिरकत से भारत के रोल को मजीद तकवियत फराहम होने और रुकन मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन और इजहार यकजहती को नई रफ्तार मिलने की तवक्को है। तियानजिन से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज चीन के शहर तियानजिन में शांघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी तन्मय लाल ने कहा कि एससीओ तीन लानतों, दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी की रोकथाम करने के मकसद से कायम किया गया था, जो आज भी एक चैलेंज बना हुआ है। एक इलाकाई प्लेटफॉर्म के तौर पर एससीओ मेंबरान के दरमियान वसी शोबों में ताउन पाया जाता है।
The program elements for the upcoming 25th SCO summit in Tianjin include a welcome banquet dinner in the evening of 31st August, and the main summit will be held on the next day, Monday, 1st September. And in addition to this, Prime Minister is expected to hold some bilateral meetings on the sidelines of the SCO summit.
भारत एससीओ का 2017 से रुकन है। 2022-23 के दरमियान भारत ने एससीओ के सरबराहाने मुमलिकत कौंसिल की सदारत की जिम्मेदारी भी निभाई है। एससीओ में 10 मेंबर ममालिक हैं। भारत के अलावा इनमें बेलारूस, चीन, ईरान, कजाखिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 125वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। آکاشوانی ہندی نشریے کے فوراً بعد اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں بھی نشر کرے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ دفاع کے شعبے میں خود کفالت محض ایک متبادل نہیں بلکہ ملک کی ترقی اور بقا کے لیے لازمی شرط ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا ماننا ہے کہ خود کفیل بھارت ہی ملک کی اسٹریٹجک خود مختاری اور سالمیت کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وزیر دفاع نے یہ بات کل نئی دلی میں ایک دفاعی کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
جس آتم نربھرتا اور سوریشی کرن کی بات میں کر رہا ہوں اسے پروٹیکشنزم کی طرح نہیں دیکھا جانا چاہیے، پرنتو ڈیفنس سیکٹر میں سیلف ریلائنس کسی پروٹیکشنزم کا مدعا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ سوورنٹی کا ایک مدعا ہے اور یہ نیشنل اٹانمی کا بھی مدعا ہے، اور یہی نہیں بلکہ میں یہ مانتا ہوں یہ بھارت کے آتم وشواس کا بھی مدعا ہے۔
آپریشن سندور کی کامیابی کو اجاگر کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ یہ آپریشن ملک کی بڑھتی ہوئی دیسی دفاعی صلاحیتوں کی ایک درخشاں مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹھکانوں پر ملک میں ہی تیار کیے گئے آلات کا استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج کے درست حملوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی مشن بصیرت، طویل تیاری اور تال میل کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر آپریشن سندور چند دنوں کی جنگ اور پاکستان پر بھارت کی فتح کی کہانی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے برسوں کی اسٹریٹجک تیاری اور دفاعی منصوبہ بندی شامل ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کی افواج کی محنت اور ملک میں ہی تیار کیے گئے دفاعی ساز و سامان پر انحصار نے اس آپریشن کو مؤثر اور فیصلہ کن طور پر کامیاب بنایا۔ سدرشن چکر مشن کو ملک کے مستقبل کی سیکیورٹی کے لیے ایک انقلابی تبدیلی لانے والا قرار دیتے ہوئے جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اس مشن کا مقصد دفاعی اور جارحانہ دونوں ٹیکنالوجیز کا استعمال پورے ملک میں اہم مقامات کو مکمل فضائی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج اپنے لوک سبھا حلقے گاندھی نگر میں نئے سرے سے تیار کردہ ایک باغ اور دو نئے تعمیر شدہ شہری صحت مراکز کی عمارتوں سمیت احمد آباد میونسپل کارپوریشن اے ایم سی کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ جناب شاہ آج شام احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے مشن ملن پروجیکٹ کے حصے کے طور پر دو شجرکاری مہم میں بھی حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ وہ گاندھی نگر شہر میں ایک سرکاری پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے اور جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ یمن کے حوثی گروپ نے کہا ہے کہ اس ہفتے کے اوائل میں راجدھانی سنا پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں حوثی گروپ کے حمایت والی سرکار کے وزیر اعظم احمد الرہاوی اور دیگر کئی وزراء ہلاک ہو گئے۔ یہ عہدیداران پچھلے ایک سال کے دوران سرکار کے کام کاج کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ ایک ورکشاپ کے دوران نشانہ بنائے گئے۔ حوثی گروپ نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کے فضائی حملوں میں کئی دیگر وزراء زخمی بھی ہوئے تھے جن کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے۔ حوثی گروپ نے کہا کہ حکومت کا کام کاج جاری رہے گا اور اسرائیل کے خلاف جلد ہی جوابی حملہ کرنے کا عزم کیا۔ حوثیوں نے 2014 میں سنا پر قبضہ کر لیا تھا اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ یمن کی سرکار کو عدن میں محصور کر دیا تھا۔ اسرائیل کے فضائی حملوں میں سنا کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور 102 دیگر زخمی ہو گئے۔ اقتصادی ماہرین نے رواں مالی سال کی اپریل تا جون سہ ماہی میں بھارت کی شرح ترقی میں زبردست اضافے کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت تمام تر توقعات سے تجاوز کر گئی ہے۔ ماہر اقتصادیات پروفیسر یشویر تیاگی نے کہا کہ بھارتی معیشت کی کارکردگی توقعات سے کہیں زیادہ بہتر رہی ہے۔ 7.8% کی ترقی پہلے کے اندازوں سے نمایاں طور پر زیادہ ہے، جو ایک مثبت علامت ہے۔ سوراشٹر یونیورسٹی راجکوٹ کے اقتصادیات کے شعبے میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سریش جی پراڈوا کے مطابق مانسون کی اچھی بارش اور زرعی پیداوار میں نمایاں اضافے کے سبب جی ڈی پی میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے۔ بھارت کی جی ڈی پی گزشتہ سال کی چوتھی سہ ماہی میں 7.4% تھی، جبکہ سال بہ سال کی بنیاد پر موجودہ پہلے سال کی سہ ماہی میں نمایاں اضافے کے ساتھ یہ 7.8% ہو گئی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا ہے کہ بھارت جلد ہی دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ और उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की को बढ़ाने का सहरा प्रधानमंत्री जनधन योजना को है। उनका यह तबसरा ऐसे वक्त में आया है कि जब भारत की जीडीपी रवा माली साल की अप्रैल तक जून से सहमाही में बढ़कर 7.8% हो गई है। ये इजाफा 5 साल सहमाहियों में सबसे ज्यादा है। इंदौर के रंगवासा गांव में सरकारी बैंकों की माली शमूलियत मुहिम संतृप्ति शिविर से खिताब करते हुए जनाब मल्होत्रा ने कहा कि मरकजी हुकूमत और आरबीआई ने 11 साल पहले बैंकों के साथ मिलकर जनधन योजना शुरू की थी, जिससे मुल्क भर में तरक्की हुई है। पंजाब 1988 के बदतरीन सैलाब के बाद से तारीख के सबसे तबाहकुन सैलाब का सामना कर रहा है। रियासत के बांधों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल और ज्यादा बदतर हो गई है। तफसील हमारे नामा निगार से।
पंजाब के आबी वसाइल के वजीर बरिंदर कुमार गोयल ने इस बात की तस्दीक की है कि मुल्हका रियासतों से पानी के बड़े पैमाने पर बहाव ने सूरत हाल को तबाही में बदल दिया है। अब तक पंजाब के 1018 गांव सैलाब की जद में आ चुके हैं। सिर्फ गुरदासपुर में ही इनकी तादाद सबसे ज्यादा 323 है। 60,000 हेक्टेयर से ज्यादा आराजी सैलाब की जद में होने के सबब फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचने के नतीजे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। सरकारी जराये के मुताबिक गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिल का कपूरथला और अमृतसर समेत सैलाब से मुतासिर जिलों से अब तक कुल 11,330 अफराद को बचाया जा चुका है। फौज, फजाइया, बीएसएफ, एनडीआरएफ और पंजाब पुलिस और रजाकाराना तंजीमों समेत पंजाब पुलिस सैलाब से मुतासर इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव मुहिम चला रही है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के लिए खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम।
हिमाचल प्रदेश में मानसून अभी भी सरगर्म है और महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कुछ इलाकों में शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
रियासत के कुदरती आफात से मुतासर जिलों में सड़क राबते को बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। चंबा भरमौर सड़क को कलसुई और राजेरा तक बहाल कर दिया गया है और मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे हुए अकीदतमंदों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरी जानिब कबायली जिला लाहौल स्पीति में पगरनाला के रास्ते नकल व हमल को बहाल कर दिया गया है और काजा की जानिब से बड़ी गाड़ियों को जाने की भी इजाजत दी जा रही है। शिमला से प्रभा शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
कजाकिस्तान के शहर शिमकेंट में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। भारत चैंपियनशिप की तारीख में पहली मरतबा सोने के 50 तमगे जीतकर सरे फहरिस्त है। उसने चांदी के 26 और कांसे के 23 तमगों समेत मजमुई तौर पर 99 तमगे जीते हैं। मेजबान कजाकिस्तान तमगों की फहरिस्त में दूसरे मकाम पर जबकि चीन तीसरे मकाम पर है। भारत के अंकुर मित्तल ने कल चैंपियनशिप के आखिरी दिन शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मर्दों के डबल ट्रैप मुकाबले में सोने का तमगा जीतकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम।
शुक्रिया आसिया। आज राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जापान के दौरे की तकमील और चीन के दौरे के आगाज को अव्वलीन शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है वज़ीर-ए-आज़म जापान के कामयाब दौरे के बाद शंघाई ताउन तंजीम SCO चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन पहुंचे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। जनाब मोदी की जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात पर दुनिया की नजरें। जबकि रोजनामा मिलाप की अहम सुर्खी है रवा माली साल की पहली सहमाही में भारत की जीडीपी में तेजी से इजाफा। जीडीपी 7.8% पर पहुंच गई। भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत के तौर पर उभर रहा है। अखबारात की दूसरी अहम खबर है ट्रंप की बैन अलाकवामी इकतसादी हिकमत अमली को बड़ा धक्का। अमरीकी अदालत ने टैरिफ को बताया गैर कानूनी।
आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। शंघाई ताउन तंजीम SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस चीन के शहर तियानजिन में आज शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफा के शोबे में खुद किफालत हासिल करने की कोशिश मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए नहायत अहम है। हूज़ी ग्रुप ने तस्दीक की है कि उसके वजीर आजम अहमद अर्रावी यमन में इसराइल के फजाई हमले में हलाक हो गए। और भारत ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो चैंपियनशिप की तारीख में पहली मरतबा सोने के 50 तमगे जीतकर सरे फहरिस्त रहा। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।